मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 27 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च की होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सलील भटनागर, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, और मनमोहन सालिकराम यादव, आपका गांव है दुगौली खुर्द, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो सलील और मनमोहन, आप दोनों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग डेरा बाबा नानक करतारपुर गलियारा आधारशिला हमारे उपराष्ट्रपति जी ने रखी है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे मुख्य विषय के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले आइए हम दूसरी खबरों को देख लेते हैं। खासकर मैं जिन दूसरी खबरों को आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, दरअसल वो रेडियो और दूरदर्शन की सीधी सीधी खबरें न होकर के अखबारों से ली गई खबरें विशेष रूप से हैं, और इसमें से एक दो घटनाएं ऐसी हैं जो एक दो दिन पहले घटित हुई थी, लेकिन उस समय मैंने इन्हें नहीं लिया था। और उसका कारण यह था कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि ये जो घटनाएं हैं क्या आकार लेती हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर वो थोड़ी सी भी चर्चा में आ जाती हैं तो डेफिनेटली वो फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन एक बार चर्चा में कोई बात आई और इसके बाद वो एकदम से गायब हो गई तो फिर थोड़ी सी उम्मीद कम होती है कि सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछे जा सकते, पूछ भी लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम उनके पीछे पढ़ेंगे तो मान करके चलिए कि फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने में हम भटक जाएंगे। हमारे पास इतनी सारी चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी कि उन्हें संभालना हमारे वश की बात नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों में मैं कुछ की चर्चा आज आपसे कर रहा हूं जिसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक है सेंटिनेली, ये बेसिकली सेंटिनेली क्या है, ये सेंटिनेलीज आप कह लीजिए, और लगभग 4-5 दिन पहले आपने अखबारों में एक खबर पढ़ी होगी कि जो अंडमान निकोबार हमारा द्वीप है उसमें ये दोनों अलग अलग द्वीप हैं, अंडमान अलग है निकोबार अलग है, लेकिन दोनों को अंडमान निकोबार ही कहते हैं, मतलब दोनों सेपरेट आइलैंड है। तो जो अंडमान जो द्वीप है उसी क्षेत्र में, आपको मालूम है कि ये बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में, ये सब आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि ये प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में है, उसी में एक छोटा सा द्वीप है नॉर्थ सेंटिनेलीज आइलैंड, इसको कहते हैं उत्तरी सेंटिनेलीज आइलैंड। तो चूंकि नाम इसका सेंटिनेलीज आइलैंड है इसलिए वहां रहने वाली जनजातियों को कह देते हैं हम सेंटिनेलीज भी कहते हैं और सेंटिनेली भी कहते हैं। घटना ये थी फ्रेंड्स कि अमेरिका के एक नागरिक थे जो कुछ मछुआरों की मदद से, लोकल लोगों की सहायता से इनके क्षेत्र में चले गए और इसके बाद इनको तीर से मार करके घायल कर दिया गया और इनकी मृत्यु हो गई। एक दो दिन तक कोई खास बातें नहीं हुई लेकिन इसके बाद फिर एडिटोरियल कमेंट आने लगा, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अब एक महत्वपूर्ण घटना है जो प्री में पूछे जाने की संभावनाओं से अयुक्त है। इसके बारे में आपको बस थोड़ी सी कुछ बातें जाननी है मित्रों। मैं आज आपको एक दो एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड भी कर रहा हूं, आप डिटेल में चाहेंगे तो वहां देख सकते हैं। ये जो जनजाति है, ये आदिवासी जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब में ये आते हैं, इनको एक कानून बना करके बिल्कुल अलग थलग रख दिया गया है क्योंकि ये खुद ये चाहते हैं कि हमारे से कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के न मिले। मूलतः ये एकदम एकांतवासी हैं, एकदम अकेले रहना पसंद करते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी आधुनिक सभ्यता, संस्कृति, सरकार, यहां तक कि सरकारी तंत्र के लोग भी वहां आए। एक घटना है 2004 में जब उनके ऊपर से, उनके क्षेत्र के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो तीरों से उन्होंने हेलीकॉप्टर पर वार, सोचिए कि तीर चलाया था, मतलब ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक कारण ये भी है कि जैसे आज मलेरिया और ये दूसरी तरह की जो बीमारियां हो गई हैं इनका इम्यून पावर उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये अपना खेती करते हैं, मगन रहते हैं, इनकी अपनी संस्कृति है, बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो सरकार ने भी कानून बना करके ये कर दिया है कि अगर किसी को वहां जाना होगा तो बिना परमिट लिए, यानी कि सरकार के आदेश के बिना वो वहां नहीं जा सकता, और लगभग वहां नहीं ही भेजा जाता लोगों को। 2004 में जब हम लोग अंडमान निकोबार गए थे तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वहां जाने को मिल जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिली थी। ये बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसी के परिणाम स्वरूप ये सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इनकी जो जनसंख्या है 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पर केवल 15 लोग बचे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 80-90 लोग तो हैं। अगर आप और कहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको यह संख्या 500 तक मिल जाए, लेकिन उतने लोग नहीं बचे हैं जो जहां तक मेरी उस समय बातचीत हुई थी। अब इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 100 रह गई है, तो आप कह लीजिए कि ये एक अस्तित्व के संघर्ष से गुजर रहे हैं। तो भारत सरकार को भी चाहिए, और जो सरकार ऑलरेडी कर रही है कि ठीक है, वो एकांतवासी हैं, एकांत में ही रहना चाह रहे हैं तो उन्हें एकांत में ही रहने दिया जाए, ताकि कम से कम इस प्रजाति की रक्षा तो इस धरती पर हो सके। तो प्री के लिए मित्रों इतना ही पर्याप्त होगा। और इससे अगर मेंस के कोई क्वेश्चंस बनते भी हैं तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस तरह से भारत में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो बाहरी सभ्यता और संस्कृति से बिल्कुल अपने को अलग रखना चाहती हैं, या ये भी बन सकता है कि दोनों सभ्यताओं और संस्कृतियों में क्या फर्क है, क्यों वो अपने को अलग रखना चाहते हैं, और अलग रखना चाहते हैं तो उनका विकास कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो इस तरह की बातें अगर आपको कहीं पढ़ने को मिल जाती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी खबर है मैरी कॉम की, आपने देखा कि मैरी कॉम किस तरह से दूसरे दो दिन पहले ही फिर से एक बार विश्व चैंपियन बन गई है मुक्केबाज की, और इस तरह से वो 6 times विश्व चैंपियनशिप उन्होंने मुक्केबाजी की जीती है। अद्भुत महिला, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब दुनिया की किसी भी महिला मुक्केबाज ने ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है। मैरी कॉम अब आप हम सबके लिए एक नया नाम नहीं है। मैरी कॉम फिल्म भी आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। आप हमारी सांसद भी मैरी कॉम बन चुकी हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं, और इनफैक्ट सच पूछे तो ये एक तरह से एक जो नारी शक्ति होती है उसकी प्रतीक है, आइकॉन है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। 3 बच्चों की मां होते हुए 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह खिताब फिर से हासिल किया है। तो एक थोड़ी सी जानकारी है। मित्रों, एक आज के अखबारों में आपको पढ़ने को मिला होगा कि अमेरिका का जो कनाडा से लगा हुआ हिस्सा है, शिकागो के पास में ये पड़ता है, वहां पर बहुत ही जबरदस्त रूप से तूफान आया है, ये बर्फ का तूफान है। ये खबर आप लोगों ने शायद अखबारों में पढ़ी हो। इसके बारे में मैं कुछ विशेष बात आपको नहीं बताने जा रहा हूं, बस केवल मैं यह कहने जा रहा हूं, और खासकर स्पेशली जो हमारे अभी क्लास के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, और वो ये कि जैसा कि मैं लोकेशन बता चुका हूं, ये कनाडा से सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ तो नहीं लेकिन चलिए आसपास का एरिया है, शिकागो के पास कंसास ये जगह का नाम है, ठीक है, यहां बर्फीला तूफान आया है। आप इसे मैप पर लोकेट कीजिए, मैंने आपको मैप के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी है, आप मैप पर इस जगह को लोकेट कीजिए। ये एग्जैक्ट ये जगह ना मिले तो आप शिकागो देख लीजिए, राइट। अब मेरे दो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आप उत्तर सोचने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, प्लीज मेरे पास लिख करके आप भेजिएगा मत कि ये मेरा उत्तर है ना, आपके अभ्यास के लिए मैं आपको दे रहा हूं, और देखिए कि आप कुछ सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विस में सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद अपने प्रश्न बनाएं और उनके उत्तर दें, और ऐसे प्रश्न बनाएं जिनके उत्तर सीधे सीधे किताबों में नहीं है। मेरा पहला प्रश्न है कि वहां बर्फीला तूफान क्यों आया, जबकि दूसरे भागों में आप हम सुनते हैं कि समुद्री तूफान आया है, बर्फीला तूफान क्यों आया, पहली बात। दूसरी बात कि यहां बर्फीला तूफान आता है जबकि अमेरिका का जो पूर्वी भाग है जिसमें हम इधर वाशिंगटन और आपके न्यूयॉर्क वाले हिस्से को देखते हैं, ये भी आप नक्शे में देखिए, वहां समुद्री तूफान आता है। तो ये क्या है, कुछ समय पहले ही आपने देखा ना कि बोस्टन वगैरह एक एरिया में समुद्री तूफान आया है। और जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी थोड़ी सी दक्षिण पश्चिम की ओर। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग पे बर्फीला तूफान आता है जबकि पूर्वी भाग में समुद्री तूफान आता है, ऐसा क्यों? तो इन दो प्रश्नों पर आप लोग थोड़ा सा अपने ढंग से विचार करें, देखें कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें खलबली मच रही है कि नहीं मच रही है। देखिए, अभी आप लोगों को यहां से गए एक महीने भी नहीं हुए हैं और मैंने स्पेशली आप सबसे कहा था कि कोशिश कीजिए कि अब आप एक महीने तक लगकर तैयारी सिविल सर्विस की कर एक बार पूरी तरह से पढ़ जाइए। और आप लोगों में से जो ऐसा करने में सक्षम हो रहे होंगे, आप पाएंगे कि उनके दिमाग में खलबली सी मच गई है और वो अब सोचने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग कम से कम चलना तो शुरू हो, और अगर चलना शुरू हो गया तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। बस मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग सोच लेते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो मुझे सूचित जरूर कर दीजिए कि हाँ, हमने सोचा। बस इतना ही उत्तर आप अपने पास रखिए। हाँ, एक दो लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं कि उसके रीजन ये हैं, तो फिर आप बिल्कुल मुझे सूचित कर सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय है डेरा बाबा नानक और करतारपुर गलियारे। करतारपुर के बीच में सड़क बनाई जाएगी जिसे नाम दिया गया है डेरा बाबा नानक करतारपुर गलियारा। ये पहली बार आपने सुना होगा, इसी पिछले सप्ताह में जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। उस समय मैंने इसकी चर्चा केवल संकेत के रूप में किया था, डिटेल में नहीं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और चूंकि कल उसकी आधारशिला हमारे उपराष्ट्रपति जी ने रख दी है और इस पर अब बातें होने लगी हैं, तो डेफिनेटली अब हमारे लिए यह महत्वपूर्ण घटना बन गई है। और महत्वपूर्ण घटना इसलिए भी बन गई है, देखिए, बननी ही थी वो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ यह रिश्ता जुड़ेगा। तो इसीलिए कल के डीडी न्यूज में इसे दोस्ती गलियारा भी कहा जा रहा है। दोस्ती का गलियारा यानी एक मित्रता की सड़क बन रही है। इसमें जो प्री के हिसाब से आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है मित्रों, वो ये है कि जो करतारपुर जो जगह है ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है ये, है ना। रावी नदी यहां से जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है पाकिस्तान भारत का, वहां से लगभग 3.5 किलोमीटर आपको और अंदर जाना पड़ेगा तब आप करतारपुर पहुंचेंगे रावी नदी के तट पर। चूंकि अब वो पाकिस्तान में है तो वहां जाने के लिए आपको वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर जानते हैं भारत और पाकिस्तान के जिस तरह से रिश्ते होते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति वहां नहीं मिलती थी। तो लोग दूर से ही 3.5 किलोमीटर दूर से वो गुरुद्वारा दिखाई देता है। ये वो जगह है जहां गुरु नानक देव ने 18 साल अपने बिताए थे और 1539 में फिर गुरुद्वारे में अपने गुरु नानक जी का निधन हो गया था और इसको बाद फिर वहां ये गुरुद्वारा बनाया गया है, राइट। तो लोग दूर से ही दर्शन कर लेते थे। अब रास्ता बनाया जाएगा, एक गलियारा बकायदे बनाया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी बॉर्डर पर कि उनको तुरंत परमिशन मिल जाए, यानी कि वीजा मिल जाए और दर्शन करके वो लौट आए। ये इसकी मुख्य खबर है प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो डेरा बाबा नानक है वो भारत में है, है ना। डेरा बाबा नानक से करतारपुर गलियारा, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स कि जो करतारपुर है वो पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है और यहां गुरु नानक देव ने 18 साल व्यतीत किए थे। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं मुख्य एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि गुरु नानक देव हमारे भक्ति काल के महान संत लोगों में है जिन्होंने निर्गुण परंपरा की बात कही थी। मेरे पास उतना वक्त अब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप मेंस की दृष्टि से गुरु नानक देव के जो विचार है, जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका जो योगदान है भारतीय दर्शन और भक्ति काल में, उस पर एक अच्छी तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि अगले साल 550वीं जयंती भी उनकी पूरी हो रही है, 550वीं जयंती, और उसी के उपलक्ष्य में यह गलियारा घोषित भी किया गया है। एक तरह से कह लीजिए कि यह राष्ट्र के द्वारा उनको दी गई श्रद्धांजलि स्वरूप होगा। तो गुरु नानक देव आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए टॉपिक बन जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, कभी वक्त मिला तो फिर मैं गुरु नानक देव जी की जो फिलॉसफी रही है निर्गुण परंपरा के रहे हैं उसके बारे में कभी बातें करूंगा। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से एक मित्र का नाम है राहुल कुमार जो समस्तीपुर बिहार से हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।